तो आज स्वयं को खुशी के फव्वारे से भिगोना है। हाँ, सब ऐसे रेडी है, बहुत अच्छा। देखो, जब आपका मन भी रेडी होता है तो जो सुना रहा है उसकी बात अंदर चली जाती है पूरी। तो थ्योरिटिकल बात नहीं, जो जो अभी सुनाया जाएगा प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करेंगे तो निश्चित आपका तन और मन दोनों खुशी के फाउंटेन से तरबतर हो जाएंगे। और आज के समय में कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, सबसे बड़ी खुराक कौन सी है? खुशी। 36 प्रकार का व्यंजन रख दो और मन खुश नहीं है तो अच्छा लगेगा? और सूखी दाल रोटी खाए और मन खुश है तो बहुत अच्छा लगता है। खुशी जैसा खजाना नहीं, मैंने खुशी की वैल्यू सुना रही हूं मैं आपको, फिर उसके बाद हम भिगोएंगे अपने को, तन और मन को। करोड़ भी है और खुशी नहीं है तो करोड़ भी ऐसा लगता कोई ले ले पर खुशी दे दे, और गरीब है खुशी है तो कहते इसके जैसा धनवान कोई नहीं। तो खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं, और खुशी जैसी दवा नहीं। आज के समय में सबसे बड़ी औषधि मेडिसिन क्या है? खुशी। तो आपको तीनों चीजें अभी मिलेगी यहां, और खुशी जैसी गिफ्ट नहीं। आप शिव बाबा के घर आए हैं, मैं समझती हूँ सारे लेसन्स में अभी तक परमात्मा का परिचय, शिव बाबा का परिचय तो मिल गया ना। हाँ, तो देखो कोई आता है तो स्थूल गिफ्ट तो आपको दी होगी बड़े दीदियों ने, पर एक सूक्ष्म गिफ्ट आज आप बाबा के कमरे में जाके साथ लेके जाना, ऐसा अनुभव करना बाबा मुझे यहां पर खुशियों की गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, लेके जाएंगे? और ये खुशी गुम ना हो उसके क्या उपाय, वो सब अभी सुनाते। तो तैयार हो जाएं आप ऐसे खुशियों के खजाने से अपने को भरने के लिए। मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूं, कॉपी पेन तो लाए होंगे तो लिखिए। खुश रहने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट इंग्लिश में है ये एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माना स्वीकार। फर्स्ट एक्सेप्ट, खुश रहने के लिए किस चीज को स्वीकार करना? जो कुछ भी आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट चल रहा है, जो भी चल रहा है, चाहे हेल्थ को लेकर, रिश्तों को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, उसको सहज भाव से स्वीकार करना है। क्यों स्वीकार करें भाई? आप कहोगे दीदी इतना अप एंड डाउन चल रहा है, कईयों के तो जॉब चले गए, कईयों की सैलरी आधी हो गई, कईयों के फैमिलीज में डिस्प्यूट्स हो गए, और आप कह रहे हो स्वीकार करो। क्यों करें? जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं उसमें हमारा मन हल्का रहता है। इसलिए स्वीकार करें क्योंकि सब दिन होतना एक समान। अगर आज सुख आया है कल दुख आता है, तो नियम है, लॉ है ना। समय परिवर्तनशील है भाई, समय का भी तो चक्र चेंज होता है ना। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और रात होती है। तो किसी के भी जीवन का चक्र एक जैसा नहीं चलता। तो अपने मन को समझाइए, जो आज आया है वो कल नहीं था और आने वाले कल में भी नहीं रहेगा। इसलिए जो कुछ चल रहा है उसको क्या कर लूं? स्वीकार, एक्सेप्ट। फिर दूसरा एक्सेप्ट, स्वीकार करना जो बीत गया आपकी लाइफ में, उसको सहज भाव से स्वीकार। जो कुछ भी गया उसको याद कर करके मन को परेशान, दुखी, अशांत नहीं करना। क्यों? मेजॉरिटी लोग कहते पास्ट की बातें इतनी याद आ रही है कि वर्तमान में जो है वो उसका भी एंजॉय हम नहीं कर पा रहे। तो अपने आप से पूछिए, अब जो बीत गया पिछला क्षण, जो घटना, जो सीन, क्या वही सीन एज इट इज दोबारा मेरी लाइफ में आना है? बताइए। नहीं, तो जो बीत गया वो बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाइए, आगे की जर्नी मुझे शुरू करनी है। जो बीत गया वो लौट कर आना नहीं वैसा का वैसा सीन, इसलिए बार बार उस सीन की रील खोल खोल कर मुझे दुखी नहीं होना। तैयार हैं आप सभी? अब कभी वो सीन आ गया सामने, वो घटना आ गई, तो क्या करेंगे? याद तो आती है, क्या करेंगे? फुल स्टॉप, बस नहीं सोचना है, क्योंकि ये वापस लौट के नहीं आना। तीसरा एक्सेप्ट, किसको स्वीकार करना? जो लोग आपके साथ रह रहे हैं, परिवार है, मित्र, संबंधी, ऑफिस में, सबके वैरायटी रोल, वैरायटी स्वभाव, वैरायटी पार्ट को स्वीकार करना, सहज भाव से लेना। यहां आपको ज्ञान मिला होगा कि संसार में हर आत्मा एक कलाकार के रूप में अपना पार्ट बजा रही है और सबको अलग अलग रोल शिव बाबा ने दिए ड्रामा में। एक का रोल, एक का स्वभाव दूसरे से मिलना नहीं है, ये फंडामेंटल सिद्धांत है। होता है ना घर में, कोई बहुत सीरियस नेचर के होते, कईयों का नेचर बहुत टाइट होता, आप कितना भी हंसाओ हंसेंगे ही नहीं। कई ऐसे होते हैं जो आलसी होते हैं हमेशा, आप कितना भी कहो। कई ऐसे होते हैं जो सिंसियरिटी के भी पहले पहुंच जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ता है? स्वीकार कि सबका अलग अलग संस्कार है, अलग अलग पार्ट है, मुझे किसी के भी पार्ट से घृणा नहीं करनी। इसलिए क्या करना? स्वीकार। बहुत एक सुंदर लाइन कहीं पढ़ी थी, आपके साथ शेयर करती अच्छी लगेगी, कि जिंदगी एक म्यूजिक प्लेयर नहीं है कि जिसमें आप अपने मन पसंद के गीत बजाओ। ये तो एक रेडियो की तरह है, जो कुछ चल रहा है उसमें ही आपको ट्यून अप करना है ना। और अब्दुल कलाम साहब ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहा कि खुदा ने कभी ये वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीले ही रहेगा। ध्यान से सुनिए, खुदा ने कभी ये वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा। खुदा ने कभी ये वादा नहीं किया कि जिंदगी भर फूलों भरी राहें मिलेंगी, कांटे आपके जीवन में होंगे ही नहीं, ये प्रॉमिस थोड़ी किया। खुदा ने कभी ये वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे। इसलिए क्या करूं? स्वीकार, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ये है खुश रहने का नंबर वन फॉर्मूला। समझा? दूसरा, पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे तो याद रहेगा कि खुशी के फाउंटेन कैसे निकले। एक स्टोरी सुना देती हूं छोटी सी। उससे बहुत प्रेरणा मिलेगी कि एक बार एक संत नदी किनारे खड़े थे। अब एक बिजनेसमैन उनके पास आए, व्यापारी, और एक प्रश्न पूछा कि संत जी, मुझे अपने जीवन में, पूरी जीवन काल में खुशी नहीं मिल रही है, मैं खुशी के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि पूरी लाइफ टाइम में खुशी मिलेगी भी या नहीं। समझा उसका क्वेश्चन? क्या समझा माताओं ने? मतलब उसको खुशी नहीं मिली पूरी जिंदगी में। तो उसने कहा क्या करूं? तो संत ने उसको कहा कि तेरी समस्या का समाधान नदी के उस पार है, और आंसर ढूंढने के लिए हमें नदी पार करनी पड़ेगी। और बोले उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा ये नदी का पानी सूख जाए। तो व्यक्ति हंसने लगा। उसने कहा संत जी, ये तो इतनी विशाल नदी है, ये तो बहती रहेगी, भला इसका पानी कभी सूखेगा क्या? हमको अगर नदी पार करनी है, उस पार जाना है, तो बहती नदी के बीच में से ही रास्ता खोजना होगा, वरना तो हम नदी सूखने का जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाएंगे। तो संत ने उसको आंसर दिया। अब सुना उसका आंसर कि सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, सफलता असफलता, ये सब मनुष्य जीवन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तुमको अगर खुश रहना है तो इसी के बीच में से अपना रास्ता खोजना होगा, वरना तुम जिंदगी भर खुश रहने की प्रतीक्षा इंतजार ही करते रह जाओगे। समझा? तो क्या करना आपको? जो कुछ आपके लाइफ में अभी चल रहा है, आप इंतजार करो ये बीत जाए फिर खुश हो जाऊं, ये व्यक्ति चला जाए तो खुश हो जाऊं, इतना मेरी सैलरी हो जाए तो खुश हो जाऊं, नहीं। जो कुछ चल रहा है उसके बीच में से ही खुश रहने की प्लानिंग आज करके जाइएगा। अभी तो समय है ना, आज आधा दिन तो है आप, तो 10-15 मिनट ही बाबा के कमरे में बैठिएगा कि जो चल रहा है एक संकल्प ले लीजिए, इसी के बीच में से मुझे खुश रहने का क्या निकालना है? रास्ता निकालना है। नहीं तो क्या होगा? जिंदगी भर आप इंतजार ही करते रह जाएंगे, जैसे उसका हुआ ना। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक सुनाने जा रही हूं, प्रैक्टिकल, कि खुशी क्यों गुम होती है। और इसका हमने प्रैक्टिस हजारों भाई बहनों से कराई। आपको सुना है ना, 20-21 साल से ये जो शिविर हम सेवा अलग अलग स्टेट में कराई, तो हजारों से इसकी प्रैक्टिस कराई, और इस प्रैक्टिस के बाद उनको नींद अच्छी आने लगी, मन शांत रहने लगा, और सबसे बड़ा डिप्रेशन से मुक्ति। आजकल हर चौथा व्यक्ति मिल जाता है और कहता है मैं डिप्रेस्ड हूं। अब उसका कारण और क्या प्रैक्टिस करनी है सुनिए। कभी कभी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर कभी आपने देखा होगा बस सफलता मिलने वाली होती और काम अटक जाता है। कभी कभी बैठे बैठे मन दुखी हो जाता है, सोचते मैंने तो कुछ करा नहीं आज। कई कहते इस जन्म में दीदी मैं तो बहुत पुण्य आत्मा हूं, मैंने किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, दुख नहीं पहुंचाया। पर क्या आप समझ सकते हैं, हमारे कर्मों की फिलॉसफी है, कुछ भी चीज बिना कारण हमारे साथ नहीं हो रही है। जो कुछ भी हो रहा है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेवार हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब है, कर्मिक अकाउंट। उसके कारण आपकी सफलता अटक रही है, उसके कारण मन में बहुत ज्यादा अशांति है, उसके कारण आपका मन क्या है, डिप्रेस्ड है, या कभी आप कुछ करने जा रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही, या कभी होता है बहुत ज्यादा थॉट्स चलते हैं। तो अब अगर पिछला कर्मों का हिसाब सेटल करना है तो उसकी एक आध्यात्मिक विधि सुनाई जा रही है आपको, यहां अब ध्यान से सुनिए। कोई भी सोना नहीं, अलर्ट होके बैठेंगे, कभी कभी ब्रेकफास्ट के बाद हल्की सी नींद आती है क्योंकि, है ना, इसलिए अलर्ट। अब क्या टेक्निक? क्षमा भाव, क्षमा मांगना और क्षमा दान देना। जैसे मानो किसी ने आपका बहुत दिल दुखाया, कुछ गलत कर दिया, तो आप कितने परेशान हो जाएंगे ना, इसने ऐसा करा, इसने ऐसा कर दिया। अब मानो एक दो घंटे के बाद या एक दिन के बाद आके वो आपसे पोलाइट वे में क्षमा माफी मांगे कि भाई सॉरी गलती हो गई थी, तो क्या होगा आपका मन, क्या हो जाएगा, शांत। फिर आप उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे। तो पूर्व जन्मों के अंदर कर्मिक अकाउंट जाने अनजाने, जरूरी नहीं है जानबूझ के, गलती से भी अपने स्वार्थवश, अहंकारवश, लोभ, ईर्ष्यावश, पता नहीं क्या क्या, किस किस के साथ हमने गलत कर दिया, तो अंदर ही अंदर उन आत्माओं की बैड एनर्जी, बद दुआएं, आहें बोलते हैं जिसको शुद्ध हिंदी में, वो हमारे साथ इस जन्म में चल रही है। उनका मन दुखी किया, उनका मन अशांत किया, तो उनकी नेगेटिव वाइब्रेशन, आहें, बद दुआएं हमारे साथ चल रही है, और उसके कारण हमारा मन बैठे बैठे क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। हम कोई काम करने जाते हैं और हमको सफलता नहीं मिलती है, या रात को नींद नहीं आती है। तो आज हम इस आध्यात्मिक भूमि पर आए हैं, तो उन सब आत्माओं को मन से आप इमर्ज करिए और सच्चे मन से अपना ईगो छोड़कर क्या मांग लें उनसे, क्षमा। क्योंकि क्षमा मांगने में क्या छोड़ना पड़ता है, ईगो। यहां भी मांगिए, और प्रैक्टिकल में अगर इस जन्म में कोई ऐसा है जिससे बातचीत ही बंद है, रिश्ते में खटास है, तो आप जब अपने अपने स्थानों पे जाएंगे तो फोन करके भी आप उनसे क्षमा मांग सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भाई माउंट आबू में ऐसा हमें कैंप अटेंड करके आए और अब हमारा तुम्हारा कोई भी वैर नहीं है। कई क्या सोचते हैं, दीदी मैंने क्षमा मांग ली तो लोग सोचेंगे इसकी गलती होगी, होता है ना। पर भारत में कहा क्षमा वीरस्य भूषणम्, एक वीर, एक महावीर, एक स्ट्रांग व्यक्ति ही क्षमा मांग सकता है और क्षमा दान दे सकता है। उस समय लगेगा कि आपकी गलती थी, मेरी गलती थी, पर बाद में रियलाइज हो जाएगा। और एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, आपको सुनाती, कि मैंने किसी से माफी मांग ली या किसी को माफ कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं गलत और आप सही। मैंने किसी से माफी मांगी या किसी को माफ कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं गलत और आप सही। इसका ये मतलब है कि रिश्ते निभाने की काबिलियत आपसे ज्यादा मुझ में है। समझ रहे, तो क्या करना? क्षमा मांगना है और क्षमा दान देना है। खोल सकते हैं रिश्तों की गांठें, और सिर्फ आज नहीं, कम से कम 10 दिन तक, जो अभी हम मेडिटेशन आपको यहां सिखाएंगे क्षमा का, 10 दिन तक सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट करिएगा। एक बहुत हल्कापन आपको लगेगा, और जो वाइब्रेशन, जो थॉट्स, जो एनर्जी आप उन आत्माओं को देंगे वो उन तक पहुंच जाएंगी। और आप कहेंगे, दीदी मुझे थोड़ी मालूम मैंने पूर्व जन्मों में किन किन को दिया कष्ट, पर वो सब आत्माएं इस रंगमंच में है ना, ब्रह्मांड में ही है यही। तो जैसे आप मांगेंगे क्षमा या क्षमा दान देंगे, आपके वो वाइब्रेशन उन तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए सब अलर्ट होके बैठे, हम मेडिटेशन करेंगे। रेड लाइट कर सकते हैं। रिलैक्स और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें, मन को सब तरफ से शांत, एकाग्र, चलिए अपने भीतर की ओर। उन सब लोगों को सामने लाए, जाने अनजाने में पूर्व जन्मों के अंदर मेरे मन, वचन, कर्मों के द्वारा स्वार्थवश, अज्ञानतावश, लोभवश इस ब्रह्मांड के किसी भी आत्मा को कोई दुख पहुंचा हो, मुझसे कोई गलत व्यवहार हुआ हो, तो मैं उन समस्त आत्माओं से सच्चे मन से क्षमा मांगती हूं। हे आत्मिक बंधुओं, मुझे क्षमा करें, अपना ईगो छोड़ के सच्चे मन से क्षमा मांगे। और मैं भी रहम की भावना रख के उन समस्त आत्माओं को क्षमा दान देती हूं। जिन्होंने मुझे कष्ट पहुंचाया, गलत व्यवहार किया, क्षमा क्षमा क्षमा। इस जगत में मेरा किसी से वैर नहीं। मेरा चित्त सबके लिए शुभ भावनाओं से भर गया। सब सुखी रहे। भले हाथ जोड़े और अंदर ही अंदर क्षमा मांगे और इस म्यूजिक को सुने। मांगते चले क्षमा और करते चले क्षमा। चित्त को शांत करें। कि आप सभी ने जिसने सच्चे दिल से माफी मांगी और सच्चे दिल से माफ किया वो हाथ उठाएं जरा। अच्छा, बहुत अच्छा। अब इस प्रैक्टिस को कितने दिन तक करेंगे? मिनिमम 10-11 दिन। और कितना कितना समय? 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम। आप देखिएगा, इससे अलग ही प्रकार की आपको खुशी मिलेगी, नींद अच्छी आएगी और जीवन में हर कर्म में आपको क्या मिलेगी? सफलता और चित्त में शांति। क्योंकि आजकल की ये एक बड़ी समस्या हो गई है कि मन बहुत अशांत रहने लगा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है और अनावश्यक सोच रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा सोचने से भी हमारी खुशी क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तो अभी तक क्या क्या फॉर्मूले बताए? खुश रहना है तो क्या करना, बोलिए, याद रहे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। दूसरी बात क्या करना? क्षमा करना और क्षमा मांगना। और तीसरा, एक स्टोरी सुनाई थी, क्या करना खुश रहना है तो? हाँ, जो चल रहा है उसमें से क्या करना खुशी का रास, नहीं तो क्या होगा? इंतजार, यहां जिंदगी निकल जाएगी। ठीक है, अब हम आपको खुशी का फव्वारा कैसे निकले उसके लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव थॉट दे रही हूं, आप लिख लीजिए, फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम। क्योंकि फाउंटेन निकालने के लिए बैठे हैं ना आज आप, वो होता है कलरफुल फाउंटेन, आपने देखे होंगे ना पानी के फव्वारे रंग बिरंगे, ऐसे जो थॉट जो विचार अभी हम दे रहे हैं इसको अगर डीपली आप करेंगे तो आपके भीतर से क्या निकल जाएगा, खुशी का फाउंटेन। हजारों लाखों भाई बहनों से करवाया है जिनको डिप्रेशन की तकलीफ थी, दवाइयां खानी पड़ती थी, तो जो थॉट अभी मैं बताने जा रही हूं उसको कईयों ने तो लिख लिख के किया, कईयों ने 50 दिन 60 दिन, क्योंकि सीवियर डिप्रेशन, तो डेली उसको उन्होंने 50 टाइम्स लिखा, 100 टाइम्स लिखा। आप एक बार लिखिए, मैं धीरे धीरे बोलती फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। लिखिए, मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूं। धीरे धीरे बोलती हूं, लिखते चलिए, फिर एक एक चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूं, खुशियों के खजानों का मालिक हूं, खुशियों के खजानों का क्या हूं, मालिक हूं, खुशी मेरा खजाना है, खुशी मेरा खजाना है, मुझे बहुत खुश रहना ही है, मुझे बहुत खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना ही है। ये पूरा थॉट हुआ, रिपीट करेंगे, आप लोग भी बोलिए, फिर मैं एक्सप्लेन करती, बोलिए ताकि किसी का कुछ मिस हुआ होगा तो लिख लेंगे। हाँ जी, मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूं, बोलिए, खुशियों के खजानों का मालिक हूं, खुशी मेरा खजाना है, मुझे खुश रहना ही, जब तक जीना है खुश रहना। अब इसको समझिए मीठे भाई बहनों, इस कोरोना काल में सबने इस चीज को अनुभव किया। याद करो जब कंप्लीट लॉकडाउन का पीरियड था, सबने अनुभव किया कि धन पद प्रतिष्ठा वैभव संबंध साधन, इनसे असली खुशी नहीं मिल सकती, क्षणिक होती है। हम ये नहीं कह रहे, इग्नोर नहीं कर रहे, धन आता है तो भी खुशी आती है, सही बात है। अभी आपको कोई लाख रुपए दे दे यहां बैठे बैठे, कितना मजा आएगा, देखो अभी तो मिला नहीं तो भी खुश हो गए। कोई साधन आ जाता है घर में तो भी क्या होती है, खुशी होती है ना, मना थोड़ी कर रहे हैं हम। अच्छा भोजन मिल जाए तो भी खुशी होती है, रिश्तों में प्यार है तो भी खुशी होती है, कोई पद आपको मिल जाता है तो भी खुशी होती है, मना नहीं कर रहे, इग्नोर नहीं कर रहे, रिजेक्ट नहीं कर रहे, पर इनसे जो खुशियां मिलती है वो टेम्परेरी होती है, क्षणिक, आज है कल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये धन, ये साधन, ये वैभव, ये पद पोजीशन, ये खुद ही क्षणिक है, आज है वो भी कल नहीं है, तो इनसे जो खुशी प्राप्त होती है वो भी क्षणिक है। इस भूमि पर आकर आप ये रियलाइज करिए, कौन कौन फर्स्ट टाइम आए यहां, मधुबन पहली बार, अरे वाह वाह, अच्छा, ये रियलाइज करिए कि सच्ची खुशी, सात्विक खुशी, इटर्नल खुशी, प्योर खुशी, एवरलास्टिंग अविनाशी खुशी एक अविनाशी परमात्मा से ही मिल सकती है। राइट बात है या नहीं? है ना, तो उससे कैसे भरना और इतना भरना, इतना लब लबा हो जाना, लबा लब कहते हैं ना, कि आपसे क्या निकलने लगे। जब कोई चीज लबा लब होती है तो वो छलकने लगता है, तो आपसे फिर वो खुशी के क्या निकलने लगे, फाउंटेन। तो इस बात को तो रियलाइज कर लिया कि अविनाशी खुशी, सच्ची खुशी, प्योर खुशी, इटर्नल खुशी खुशियों के सागर से मिलती। तो अब आप रियलाइज करिए भीतर में जाकर कि मैं किसकी संतान हूं, परमात्मा, ऊंचे से ऊंचा भगवान। कल भी बताया था हमने कि राजा का बच्चा होता है, भले आयु में छोटा हो तो भी उसको मजा रहता है, मैं कौन, राजकुमार। शेर के बच्चे को क्या रहता है, शेर की ताकत। तो मेरा पिता, अब अपने से बात करना, मेरा पिता उसकी महिमाएं खुशियों का सागर, ओशन ऑफ हैप्पीनेस। परमात्मा को हर चीज का क्या कहते हैं, सागर कहते हैं ना, दया का सागर, करुणा, प्यार, क्षमा। तो वो खुशियों का सागर, इसको रियलाइज करो, अंदर से रियलाइज करो तो फाउंटेन निकलेंगे। अब दुनिया में बच्चा जो होता है वो पिता की सारी प्रॉपर्टी का, खजाने का, दौलत का, संपत्ति का क्या होता है, वारिस, मालिक होता है या नहीं। तो मैं खुशियों के सागर, अपने से बात करना है, परमात्मा की संतान हूं, तो प्रभु पिता का खुशी का जो खजाना है, खुशी की जो प्रॉपर्टी है, खुशी की जो दौलत है, उसका क्या हो गए हम, मालिक। तो फिर मैं डिप्रेस्ड क्यों, ऐसा क्यों बोले कि आप तो सागर हो, एक बूंद ही दे दो। मैं तो खुशियों के खजानों की क्या हो गए, मालिक। तो अपने आप से बात करना, खुशी मेरा खजाना है, प्रॉपर्टी है। और अब फील करो, अभी सबको पता चला ना कि आत्मा कहां चमक रही है आप सबकी, यहां। तो फील करो, शिव बाबा का स्वरूप पता चला आपको, वो भी क्या, बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। तो आपके सिर के ऊपर कौन चमक रहा है, शिव बाबा। और अभी फील करिए, शिव बाबा आपको खुशी का फाउंटेन, उसकी खुशी का प्रकाश, खुशी के फाउंटेन, खुशी के प्रकाश का रंग होता है येलो, ठीक है। कल शक्ति का बताया, गोल्डन रेड। अब फील करो, आपकी आत्मा यहां चमक रही है, सिर के ऊपर वो महाज्योति परमात्मा, खुशियों का सागर, और वो आपको क्या दे रहा है, खुशी का खजाना, और निशुल्क दे रहा है। दुनिया में कुछ भी चाहिए पैसा शुल्क देना पड़ता है, और परमात्मा सच्ची खुशी का खजाना, अविनाशी खुशी की दौलत, चूंकि आप उसके बच्चे तो वो आपको कैसे दे रहा है, निशुल्क। तो भरो उसको जरा एक सेकेंड, बस दे रहा है, शिव बाबा मुझ पर खुशी का प्रकाश, खुशी का खजाना, खुशी की दौलत निशुल्क दे रहे हैं, भर रहे हैं हम, भरिए। और अब फील करिए, इतना शिव बाबा ने खुशी की दौलत से, खुशी के प्रकाश से, खुशी की संपत्ति से, खुशी के खजाने से मुझे लबालब कर दिया है, कि अब मुझसे खुशी के कलरफुल फाउंटेन निकल रहे हैं। देखो जरा अपने में से निकल रहे हैं खुशी के रंग बिरंगे फव्वारे। और अब संकल्प करो, बोलिए सब मेरे साथ, जब तक जीना है खुश रहना ही है, मैं खुशियों के सागर, शिव बाबा की संतान हूं, खुशियों के खजानों की मालिक हूं, मुझे बहुत खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश, ठीक है। ये विधि है। रोज आप शिव बाबा से क्या भरेंगे? खुशी का प्रकाश निशुल्क। देखो कितनी बड़ी बात, छोटी सी चीज भी आज खरीदो तो कुछ देना पड़ता है। और एक दिन, मैं आपसे ज्यादा लंबा होमवर्क नहीं, एक ही दिन आप चेक करना आपकी खुशी कहां गुम होती है। आप पाओगे, लिस्ट बना लेना एक दिन, किसी ने आपके हिसाब से काम करके नहीं रखा और आपकी खुशी गुम, किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी और खुशी गुम, बात नहीं मानी और भोजन आपको प्रॉपर नहीं मिला, टाइम पे नहीं उठे। कहने का भाव सुनिएगा, छोटी छोटी बातों के पीछे जीवन की अमूल्य दौलत खुशी को हम क्या कर देते हैं? गवा देते हैं। बातें होती है छोटी छोटी, पर आज इस भूमि पर संकल्प लें, सभी लें और मेरे साथ बोले, पहले सुने कि छोटी बात तो क्या, बड़ी भी आ जाए तो भी खुशी की दौलत को गवाना नहीं है, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? खुशियों के सागर। आप खुश रहेंगे तो वो बात आई और गई। बातों का क्या है? बातों में कुछ ताकत नहीं है, बाबा के महावाक्य है ये, भगवानुवाच। बातों से ज्यादा पावरफुल आप हो, क्योंकि आप किसकी संतान हो? शिव बाबा के। कल बताया था ना, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली कौन? मैं। तो बातें आएंगी और कि हमेशा आपके पास बैठेंगी, जो आया है वो जाएगा, समस्या आएंगी जो जाएंगी, पर मुझे अपनी खुशी की दौलत को गवाना नहीं है। प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब तक जीना है खुश रहना। वचन, कल भी कहा था, प्रतिज्ञा, व्रत, ऐसी सोचते ना दीदी ने कहा खुश रहना है, खुश रहना है, और फिर कोई सीन आया, कोई सिचुएशन आई तो क्या हो जाता है? पर व्रत ले लेंगे ना कि हम माउंट आबू से, मधुबन से, बाबा के घर से खुशी की क्या लेकर आए? गिफ्ट, खुराक, खजाना, दौलत, कुछ भी कहो, कितनी बड़ी दौलत मिल गई। अगर आपके यहाँ पे मालूम पड़ जाए कि यहाँ खुशी की दौलत मिल रही है, खजाना है, तो लोग क्या करेंगे? फटाफट भीड़ लग जाएगी यहाँ। पर ये सूक्ष्म है ना, जो दिखती नहीं है। आपकी आत्मा को मिली खुशी की दौलत यहाँ? मिली या वैसे ही है जैसे आए थे? मिली ना, देखो सबके चेहरे बता रहे। तो अब इस खुशी की दौलत को गवाना नहीं है, क्योंकि बातें आएंगी और चली जाएंगी, समस्याएं आएंगी और चली जाएंगी। बातों में कोई भी ताकत नहीं है, पावरफुल कौन है? आप है। तो छोटी छोटी बातों के पीछे जीवन की बहुमूल्य दौलत गंवाना नहीं है। खुशी आपका खजाना है, इसको दूसरों की अमानत नहीं बनने देना। खुशी का रिमोट अपने हाथ में रखना है, दूसरों को नहीं दे देना कि जब चाहे वो मेरी खुशी गुम कर दे और जब चाहे वो खुशी ले आए। ठीक है, ऐसा होता है ना, रिमोट होता है, जो चैनल दबाना चाहो, पर ऐसा नहीं। कौन? अपने अपने हाथ में रखना है, और कभी भी गुम हो तो क्या करेंगे? ढूंढ लेंगे, नहीं देने ही नहीं। पहली बात तो गुम हो जाए तो ये जो थॉट दिया ना आपको, लिखवाया है, उसको क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। मैंने बताया ना, हजारों भाई बहनों का अनुभव, इस थॉट को रोज उन्होंने 100 times लिखा, 50 times लिखा, 50 दिन तक लिखा, फीलिंग के साथ। ऐसा नहीं बस लिख रहा है, कलम चल रही है, कहीं होते पता नहीं मन लिख रहा है और दिमाग और कहीं है। भले ही कम बार लिखो, पर उसको क्या करना? फील करना। करेंगे सभी मेरे साथ? चलो दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, फील करो, मैं खुशियों के सागर शिव बाबा की संतान हूं, खुशियों के खजानों का मालिक हूं, खुशी मेरा खजाना है, मुझे बहुत खुश रहना ही है। जब तक जीना है खुश रहना ही है, और खुशी बांटनी है, ये मेरा स्वयं से वचन है। बहुत अच्छा लिया आपने। अभी 2 मिनट बाद यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, पता है आपको, मालूम पड़ा होगा ना अभी कि आपकी क्लासेस में नहीं बजता। तो उस समय क्या करना, यही प्रैक्टिस कि शिव बाबा से क्या आ रही है, खुशी का खजाना, दौलत, झरना, कौन से रंग का, येलो, बस। और इतना शिव बाबा ने मुझे दे दिया क्योंकि मैं उसका क्या हूं, बेटा हूं, क्या हूं कि भिखारी है, अभी भी मांग रहे हैं एक बूंद ही दे दो। हाँ, क्या कहते हैं, आप प्यार के सागर और आपकी एक बूंद के, तो आप प्यासे तो नहीं हो, शिव बाबा के घर में आए हो तो आप उसके खजाने के क्या बन गए, मालिक। तो बस बाबा बरसा रहा है और मैं इतना लबालब हो गई, लबालब हो गई, लबालब हो गई कि अब आपसे क्या निकल रहे हैं, खुशियों के फाउंटेन निकल रहे हैं ना। और आप घर में भी जाओगे और ये प्रैक्टिस करोगे कि आपसे खुशियों के क्या निकल रहे हैं, फाउंटेन, तो आपके घर का, ऑफिस का, दुकान का वायुमंडल, इस संकल्प की प्रैक्टिस आप करेंगे तो वहां का एटमॉस्फेयर भी कैसा हो जाएगा, खुशी का। और आपको पता रहे एक सीक्रेट, जिस घर में खुशी है, प्यार है, वहां बीमारियां नहीं होती। जहां तनाव है, दर्द है, नफरतें हैं, वहां बीमारियां होती है। और एक सीक्रेट, जिस घर में खुशी है वहां धन भी छमाछम करके बरसता है। तो बरसना है कि नहीं, ठीक, क्योंकि वो भी चाहिए, ठीक है, सब चीज चाहिए ना जीवन के अंदर। हा? तो खुशी का एटमॉस्फेयर अगर घर में बनाना है तो आजकल किसी से भी मिलो तो मेजॉरिटी के चेहरे कैसे दिखते हैं, मुरझाए, सीरियस। हा? और आप यहां से जाओ तो लोगों को लगे कि खुशियों की खान से निकल के आए हैं, क्या दौलत मिल गई, क्या मिल गया। वैसे भी कहते हैं जब प्रभु मिलन होता है तो उसका ना पैर जमीन पे रहता है ना, मतलब मन डांस करे आपका, क्या पाया मैंने इधर, परमात्म मिलन, परमात्म परिचय, ये बहुत बड़ी लॉटरी आपको मिली है। देखो जिसके लिए साधु संत क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, घर छोड़ देते हैं। आपको पता हो साइंटिस्ट लोगों ने उसे पाने के लिए, ब्रह्मांड के रहस्यों को ढूंढने के लिए अरबों की मशीनें लगा दी, पर इतना खोजने के बाद भी प्राप्त नहीं हो सका। और आपको बिन कौड़ी यहां क्या मिल गया, परमात्मा मिलन, उसका सत्य परिचय। अब परिचय आपको मिला, अब ये आपके ऊपर है कि आप उससे कितना रिश्ता रखें। होता है ना, किसी का इंट्रोडक्शन मिला है तो अब उससे आगे फ्रेंडशिप कंटिन्यू करनी है, रिश्ता आगे बढ़ाना है, या यही तक है, बस ठीक है, हाँ परमात्मा शिव बाबा पिता है, क्या विचार है, बढ़ाना है ना, तो उसके लिए क्या करना, वो अभी हम आपको बताएंगे। पर चलिए हम सब पहले खुशी के क्या भरेंगे, फाउंटेन। देखो बच्चे भी भर रहे चलिए सब अपने मस्तक पर आत्मा सितारा चमकता देखें, मैं खुशियों के सागर शिव बाबा की संतान मुझे अनुभव हो गया, अविनाशी खुशी अविनाशी परमात्मा ही दे सकते हैं। उनसे खुशियों का झरना येलो रंग की खुशी का प्रकाश, खुशी की दौलत, खुशी के गिफ्ट, मुझ में समा रही है। भरे उस खजाने को, बाबा निशुल्क दे रहे हैं। आहा, इतना शिव बाबा ने खुशी के झरने से, दौलत से, खजाने से मुझे भरपूर कर दिया। लबालब कर दिया। कि अब मुझसे खुशी के कलरफुल रंग बिरंगे फाउंटेन निकल रहे हैं। अपने आप से खुशी के कलरफुल फाउंटेन निकलते देखिए। वाह, मुझे खुशियों की गिफ्ट मिल गई, खुशी की प्रॉपर्टी मिल गई। बातें आएंगी, चली जाएंगी, बातों की वैल्यू नहीं है। बातों से अधिक पावरफुल मैं हूं, मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है। मुझसे मेरी खुशी कोई छीन नहीं सकता। मैं सदा खुश रहूंगी। आज मेरा ये स्वयं से वचन है। जब तक जीना है खुश रहना ही है। ओम शांति। लिया स्वयं से वचन तो आप बोल दीजिए तो याद रहेगा, नहीं तो भूल भी जाते हैं। बोलिए दोनों हाथ ऊपर करके, मैं खुशियों के सागर शिव बाबा की संतान हूं, खुशियों के खजानों का मालिक हूं, खुशी मेरा खजाना है, मुझे बहुत खुश रहना ही है। जब तक जीना है खुश रहना है, जब तक जीना है खुश रहना है, ये मेरा स्वयं से वचन है। बहुत अच्छा। किस किस ने लिया ईमानदारी से? सबने। तो एक काम करिएगा, अपने घर में एक फ्लेक्स पे इस विचार को बहुत सुंदर लिख के टांग देना और उसको रोज क्या करना, रिवाइज। पढ़ना नहीं है, पढ़ने में तो हो गया, हाँ पढ़ लिया पढ़ लिया। उसको क्या करना, फील करना। 10 मिनट उस पे मेडिटेशन करना, बाबा से खुशी भरना। और बताया ना एक बहुत अच्छा फॉर्मूला, ये बाबा के द्वारा बताया गया कि कोई भी बात आती है बाबा को दे दो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो खुद नहीं रखते अपने पास, किसको दे देते हैं बोझ, माता पिता को कि बाबा आप संभालो, ठीक है, कितना इजी। मैंने कहा था कल कि कुछ भी हो अंदर, कोई प्रेशर, कोई तनाव, कोई दबाव, वो लेटर लिख के बाबा के कमरे में डाल देना और क्या कहो दो, बाबा आप संभालो। बाबा कहते हैं बाबा को दे दो, बाबा आप संभालो और आप मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, मना आप शिव बाबा को याद करते रहो, मेडिटेशन करते रहो, बाकी काम बाबा संभाल लेगा। ठीक है, करके देखो, ये एक एक टेक्निक है ये। अब मैं आपको एक और बात सुनाती खुशी के लिए। देखिए अब आपको करना क्या है जाने के बाद, नहीं तो आए दो तीन दिन सुना अच्छा लगा फिर उसी एटमॉस्फेयर में हम चले जाते हैं। तो देखिए इस कोरोना काल के पहले सबने ये रियलाइज किया कि हम सबकी लाइफ मेजॉरिटी की एक रूटीन धर्रे पर चल रही थी। लोग सुना रहे थे कि इतना हम भागदौड़ में शामिल हो गए थे, तन की भागदौड़, मन की भागदौड़, कि ना हमारे पास खुद के लिए वक्त था और ना अपने परिवार के लिए वक्त था। मनुष्य को रियलाइज हुआ कि आवश्यकताओं से अधिक विलासताएं और विलासताओं से अधिक एक भव्य जीवन शैली ही तनाव का एक प्रमुख कारण है। तो इस कोरोना का सबसे बड़ा लेसन क्या है अब सुनिए। इसने हमें सिखाया है कि कुछ भी परिवर्तन करने में ज्यादा समय नहीं लगता, कुछ दिनों में सब कुछ बदल सकता है इंसान अगर चाहे तो। देखिए सबकी लाइफ स्टाइल बदली है, अब तो फिर भी सब नॉर्मल सेटअप हो रहा है, पर सब चीज क्या हो गई, ऑनलाइन बदली ना सबने। बिजनेस करने का तरीका ऑनलाइन, डिजिटल ट्रांजेक्शन, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन, दोस्तों से मिलना ऑनलाइन। कहने का भाव, अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी बदलने में उसको वक्त नहीं लगता, ये ऑनलाइन टेक्निक सबने अपनाई ना। तो कोरोना का सबसे बड़ा सबक है कि व्यक्ति दिल से अगर बदलना चाहे तो बदल सकता है, इच्छा होनी चाहिए। तो ये समय विचलित होने का नहीं है, कुदरत की तरफ से हमें अपनी लाइफ स्टाइल को 360 डिग्री टर्न करने के लिए मिला है। 360 डिग्री माना कंप्लीट, 360 डिग्री का होता है ना बच्चों का कैंपस, है ना, हाँ देखो बच्चे कह रहे। तो कंप्लीट आप चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल अगर आपकी इच्छा है तो। टर्निंग पॉइंट लाइफ में कभी भी आता है, उसकी कोई भी एज नहीं होती और कोई भी वक्त नहीं होता। तो आप सब तैयार हैं इस भूमि पर आके अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए? अभी आप सुने तो सही पहले कि क्या करनी चेंज, क्या करना, क्या चेंज के लिए हम कह रहे होंगे। वो तो हो गया कि डिजिटल ट्रांजेक्शन होने लगे, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, क्या क्या ऑनलाइन होने लगा। हमको क्या करना है, हम आपसे कहते कि एक घंटा या बहुत बिजी है तो 45 मिनट्स अपनी रोज की लाइफ स्टाइल में स्पिरिचुअलिटी को भी दीजिए। क्या लगता है आपको, इसको हमें अपनी लाइफ का कंपलसरी हिस्सा बनाना है। अभी तक ये पार्ट टाइम जॉब था, लोग सोचते हैं जब फुर्सत मिलेगी रिटायर हो जाएंगे या कोई प्रॉब्लम आएगी तब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे। पर अभी कोरोना काल में अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज, अच्छे अच्छे मिनिस्टर्स, उनका अनुभव क्या रहा? आपने न्यूज़पेपर, यूट्यूब इन सब पे सुना कि जब उन्हें भी कोरोना हुआ तो कोई उनकी काउंसलिंग करने वाले डॉक्टर्स भी वीडियो पे काउंसलिंग कर रहे थे, क्योंकि बीमारी ऐसी थी कि कोई भी एक दूसरे से मिल नहीं सका। तो उन्होंने सुनाया, अच्छी, मैं नाम नहीं लूंगी, पर बड़ी सेलिब्रिटीज ने, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, सीएम, इन सब ने सुनाया उनको कोरोना हुआ, तो बोले ऐसे तो हमारे इतने चाहने वाले, इतने वैभव, एक इशारे पर दुनिया आ जाए हमारे, पर बोले हम भी अपने घरों में क्या हो गए, कैद हो गए। तो बोले उस समय हमें आवश्यकता लगी मानसिक मजबूती, ये शब्द दिया उन्होंने, और बोले उस समय हमको लगा सब था हमारे पास, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, साधन, कि इस समय अगर आध्यात्म होता, मानसिक सहारा होता, तो हम इस दौर को सहजता से पार कर लेते। तो ये रियलाइज होता जा रहा है कि आध्यात्मिकता कंपलसरी पार्ट है, मानते हैं इस चीज को। हम आपको बताते, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े लाखों भाई बहन है, अभी तो लाखों की संख्या, देश विदेश में आपको बताया गया होगा 137 ब्रांचेस, मतलब देशों में 8,700 से ज्यादा ब्रांचेस। तो लाखों भाई बहन गृहस्थी है, टॉप से लेकर बॉटम तक के लोग आते हैं यहां। केवल उन्होंने क्या परिवर्तन किया, जो भी अपना रूटीन वर्क है, डॉक्टर्स भी आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं, एक घंटा वो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म को देते हैं। और उन्होंने अनुभव सुनाया कि जब इस कोरोना काल में लोग बहुत तनाव में थे, डिप्रेशन में थे, डर में थे, पर हम, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में आते थे, आपको पता हो यहां डेली हमारे सेंटर्स पर मॉर्निंग में शिव बाबा के महावाक्य, जिसको हम क्या कहते हैं, मुरली, वो क्लासेस चलती है। और उसमें सिर्फ पॉजिटिव विचार नहीं, पॉजिटिव विचार तो जनरल हो जाते हैं, कोई भी सुना सकता है, वो विचार होते हैं ईश्वर द्वारा दिए, सुनाए गए विचार, और उससे ज्यादा मोटिवेट, परमात्मा के विचारों से ज्यादा मोटिवेट कोई भी आत्मा को नहीं कर सकता। तो लाखों भाई बहनों का अनुभव कि उस विचार को हम सुनते थे, क्योंकि उनकी आदत थी सालों से, तो बोले हम तनाव, डिप्रेशन, डर, एंजाइटी, इससे दूर थे। और बोले लोगों को समय कम पड़ता था, समय काटना पड़ता था, और बोले हमारे पास इतना ज्ञान का खजाना, इतना ज्ञान का खजाना था कि हमारे लिए समय कम पड़ता था। और अनुभव है लाखों भाई बहनों का, हजार नहीं, लाखों की संख्या में, कि एक घंटा वो बाबा के घर जाते हैं, जहां भी आप जिस शहर से आए, सब दूर ब्रांचेज हैं, एक घंटे की मुरली इतना बैटरी चार्ज कर देती है, इतना ऑक्सीजन दे देती है कि सारे दिन आप अपना खुशी खुशी व्यतीत कर सकते हैं। तो हम तो आपसे यही कहते हैं, कोई भी चीज जीवन में एक्सपेरिमेंट करिए। अभी तो चूंकि सब खुल चुका है तो यूट्यूब पे नहीं सुनना, देखो प्रैक्टिकल मिल रहे हैं तो अलग होता है ना, वाइब्रेशंस जाते हैं, तो प्रैक्टिकल सेंटर्स पर आप जाएं, जिन्होंने वहां का कोर्स नहीं करा, कोर्स करें, फिर उसके बाद एक महीना, दो महीना एक्सपेरिमेंट करें कि अगर मैं एक घंटा, कई क्या कहते हैं, हम तो देते हैं ना आध्यात्म को, पर आध्यात्म माना स्वयं को कनेक्ट कर देना किससे, परम आत्मा, ये आध्यात्म है। कई सोचते हम मंत्र जाप करते, पूजा करते, हो गया। आध्यात्म का मीनिंग क्या है, क्या समझते हैं स्पिरिचुअलिटी, बताइए जरा, एक आध लोग शेयर करिए, क्या होती है आध्यात्मिकता। कई समझते मंत्र उच्चारण कर लिया, कीर्तन हो गया, चलो उससे भी मन शांत होता, हम ये नहीं कह रहे, पर व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? अच्छा, और अध्यात्म माना स्वयं को जानना कि मैं कौन, एक लाइन में। और स्वयं को जानने के बाद किसको जानना? परमात्मा को जानना, दूसरी लाइन। और तीसरे में स्वयं को कनेक्ट कर देना परमात्मा, ये है अध्यात्म। आपको ज्ञान मिला यहां कि आप शरीर नहीं, कौन है? आत्मा, एक शक्ति। ये तो एक बेसिक ज्ञान दिया, क्योंकि दो तीन दिन में कितना सुनाएंगे, पर विस्तार का आत्मज्ञान, आत्मा के भीतर क्या क्या शक्तियां छुपी हुई है, आत्मा के गुणों में कैसे निखार आ जाए, वो सब जब आप डिटेल जाएंगे वहां तो आपको सिखाया जाएगा। इसीलिए तो कह रही हूं कितनी बड़ी प्राप्ति यहां हुई है। किसी को एक इतना सा ज्ञान हो जाता है, बोलते आत्मज्ञानी जा रहा है, तो आप सब क्या बन गए यहां से? आत्मज्ञानी। तो अध्यात्म माना स्वयं को जानना और फिर परमात्मा। लोगों को पता नहीं इसलिए इतना कंफ्यूजन है, इसलिए कह देते बस जहां देखूं वहां तुम ही तुम। पर परिचय मिला गॉड इज वन, और वो सर्व आत्माओं का पिता कौन है, क्या स्वरूप बताया यहां? ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। और उसका प्यार से नाम क्या बताया? शिव बाबा। तो उससे, उसको जानना और उससे रिश्ता जोड़ना, ये अध्याय। एक तो नॉलेज हो गया, हाँ ये शिव बाबा है, पर वो मेरा पिता है, वो मेरा फ्रेंड है, रिश्ता जुड़ जाए उस सर्वोच्च से, ये अध्यात्म है। अभी तक भक्ति करते तो क्या कहते, तुम मात पिता हम बालक तेरे, वो तो ठीक है, पर फिर भी क्या मांगते थे? एक बूंद दे दो। अब यहां रियलाइज करो, आपको कोई कह दे ये सागर, ये आपका है खजाना पूरा, तो आप फिर ऐसा थोड़ी कहोगे ना, एक एक मानो ये हॉल में बहुत सारी मैं अशरफियां रख दूं, और आपको कहूं ये पूरी है आपकी है, तो क्या आप एक कटोरी लेके आ जाओगे? देखो बोल रहे नहीं, आप तो क्या करोगे, सारी दौलत ही। तो अब यहां तो बाबा से आपका पिता पुत्र का रिश्ता जुड़ाया जा रहा है, तो अब ऐसा कहोगे कि एक बूंदी दे दो शांति, भगवान इतना सीखा, एक घड़ी शक्ति दे दो? नहीं, मैं इस, ये रिश्ता, वो पिता है, उसकी सारी खुशी, शांति, प्यार, आनंद, इस सारी दौलत का मैं क्या हूं? मालिक। तो खुद को जाना, शिव बाबा को जाना, मैं उसका मालिक हूं, पर अब वो भरू कैसे? तो उसकी विधि क्या है? कोई फीस देनी पड़ेगी? उसकी विधि है मेडिटेशन, अपने को कनेक्ट कर देंगे। जैसे प्लग कनेक्ट कर देते हैं तो सारा करंट आने लगेगा ना, सिर्फ कनेक्शन की विधि और प्रॉपर सीख लेंगे तो बाबा का जो खुशी का दौलत, शांति का खजाना, प्यार, शक्ति, आनंद, सुख, उससे आप क्या हो जाएंगे? लबालब। तो मीठे भाई बहनों, यही चेंज करना है आपको। क्या चेंज करना? लाइफ स्टाइल में 45 मिनट्स रोज किससे कनेक्ट हो जाना है? शिव बाबा से। इसीलिए ब्रांचेस खुले हैं, और हम आपको निस्वार्थ भाव से कह रहे हैं। क्या स्वार्थ है यहां? कि यही चीज जीवन में काम आएगी, और इसका हमने कोरोना काल में सबने बहुत अच्छा अनुभव कर लिया, कि अगर भगवान से फ्रेंडशिप होगी तो आपके पास धन भी आ जाएगा, जितना चाहिए उतने साधन भी आ जाएंगे, लोग मदद के लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बीज ही आपके साथ हो गया। समझ रहे? तो ये परिवर्तन करिए, और ये नहीं कहना नहीं हो सकता। इसने हमको सिखा दिया कि जो चीज हम चाहें वो एक क्षण में परिवर्तन कर सकते। ठीक है, अब मैं लास्ट आपको खुश रहने की एक स्टोरी सुनाती, फिर वाइंड अप करेंगे। ऐसी एक बिजनेसमैन वापस एक महात्मा जी के पास आए, उसने भी पूछा कि खुश रहने का कोई फॉर्मूला बता दीजिए, मेरे को खुशी नहीं मिल रही लाइफ में। तो वो महात्मा जी उसको एक बगीचे में ले गए। वहां बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिले हुए थे। तो महात्मा जी ने उसको कहा कि पूरे बगीचे में तू चलता जा, जो फ्लावर जो पुष्प तुझे सबसे सुंदर और खुशबूदार लगे, खूबसूरत लगे, उसको तोड़कर मेरे पास ले आना। पर एक शर्त रख दी थी कि एक लाइन से चलना और वापस मुड़कर नहीं देखना, लाइन से चलते जाना। जो फूल तूने छोड़ा वो छोड़ा, उसको तू वापस लेने नहीं आ सकता। तो वो बिजनेसमैन चलता गया चलता गया। जो भी खूबसूरत फ्लावर उसको दिखता, उसके पास पहुंचकर वो यही सोचता कहीं इससे अधिक खूबसूरत और आगे मिल जाए तो। फिर वो चलता गया, कहीं इससे अधिक खुशबूदार और मिल जाए तो। तो ऐसा करते करते वो लाइन के अंत तक आ गया और लास्ट में उसने देखा थोड़े से मुरझाए हुए फूल बचे थे। अब शर्त थी कि दोबारा लौटकर नहीं आ सकता। तो क्या समझा इससे? एक बड़ी खुशी की प्रतीक्षा में हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को छोड़ते जाते हैं, इग्नोर करते जाते हैं कि कहीं इससे अधिक खुशी और मिल जाए तो, कहीं इससे अधिक खुशी और मिल जाए तो। और जब तक ये समझ में आता है जीवन में मुड़कर वापस नहीं आ पाते, खत्म हो जाता है ना। तो क्या करना? हर छोटी छोटी खुशी को सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है। तो यहां से जो खुशियां आपको मिली है, जो परमात्मा मिलन हुआ है, जो आध्यात्म का बीज आपके अंदर गया है, बीज तो सब में चला गया, अब आपके ऊपर है उस बीज को आप कितना पानी देते, कितनी खाद देते, कितना धूप देते, तो वो बीज से सुख शांति का फल आपके जीवन में आ जाएगा। खाद देना पानी देना माना सेंटर्स पे जाएं, वहां के वाइब्रेशन में बैठें, शिव बाबा के महावाक्य सुने और उनसे अपना रिश्ता आगे बढ़ाएं। यही हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और यही खुशियों के फव्वारों का रहस्य है। तो निकले सबसे खुशी के फव्वारे? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप सब ये करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे, हर खुशी को सेलिब्रेट करेंगे, जो है खुशी का रिमोट अपने हाथ में रखेंगे और सबको क्षमा दान भी देंगे। ये सब आपको जो सिखाया, और सबसे मूल बात आध्यात्म का खजाना जो यहां से मिल रहा है, बाबा से हमेशा अपना रिश्ता जोड़ के रखेंगे। ऐसा नहीं घर पे ही कर लेते हैं, नहीं, स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को क्या करते हैं, भेजते हैं ना। ये तो अभी ऐसा समय था तो सबका ऑनलाइन चला, बाकी तो पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चे जाएं। तो बाबा ने भी इतनी यूनिवर्सिटीज खोली है, तो आप वहां जाएं और विस्तार का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। यहां तो ए फॉर एप्पल हुआ, बाकी भारत का प्राचीन जो आध्यात्म है, मूल संस्कृति, प्राचीन योग, ये यहां सिखाया जाता है। और अगर आपने कंप्लीट उसके सीख लिया तो आपको रियलाइज होता जाएगा मेरे जैसा खुश नसीब इंसान दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि आपको बता दूं, लेसन्स में बताया होगा कि समय तो और नाजुक आएगा, अभी कलयुग का क्या होगा, परिवर्तन और एक नई सृष्टि का आरंभ। तो उस परिवर्तन की प्रक्रिया में हम विचलित ना हो, हमारा माइंड स्टेबल रहे, उसके लिए जरूरी है आध्यात्म। ठीक है, चलो ओम शांति। दो मिनट बाबा को याद करेंगे। बस सोचो खुशी के फव्वारे निकल रहे हैं।
छे।